राजा परीक्षित, आज कन्हैया भगवान के द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों से कह रहे हैं कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से एक बार जाकर कह दो कि तुम्हारा बचपन का यार, बचपन का सखा सुदामा आया है। तो द्वारपाल कहने लगे कि तुम, अरे तुम्हारा मित्र कन्हैया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमें तो नहीं लगता कि तुम कन्हैया के मित्र हो। सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया, एक बार, बस एक बार जाकर कह दो। अब तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है। अब तो द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया। द्वारपाल को भी डर लग रहा है कि अगर मैं कन्हैया को बताऊं कि एक भिखारी जैसा आपको मित्र बता रहा है, एक भिखारी कह रहा है कि मेरा बचपन का यार है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, अगर मैं महाराज को बताऊंगा तो कहीं वह मुझे दंड ना दे दे, उसे डर लग रहा है। फिर भी कन्हैया के पास वह पहुंचा और पास में जाकर कहा कि महाराज, एक व्यक्ति बाहर आया है, बिल्कुल भिखारी जैसी अवस्था है और वह आपको मित्र बता रहा है और कह रहा है कि कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का यार है। तो कन्हैया ने पूछा कि नाम नहीं बताया उसने? कि हाँ, नाम बताया, उसका नाम है सुदामा। जैसे कन्हैया ने सुना कि सुदामा, तभी भगवान ने भोजन किया था, पैरों में कुछ पहन भी नहीं रखा है, मोर मुकुट नीचे उतार के रख दिया और दौड़े दौड़े नंगे पैर चले गए। जब ही सुना कि सुदामा आया है, दौड़े दौड़े कन्हैया जा रहे हैं, कन्हे पर पटका डाला हुआ है, वो भी नीचे गिर गया। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और जैसे ही सुदामा को देखा, सुदामा को जाते ही गले से लगा लिया, कह रहे मेरा मित्र, मेरा सुदामा आ गया। अब तो कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी को गले से लगाया तो सुदामा जी भी रोने लग गए और कन्हैया भी रोने लग गए। कन्हैया ने कहा कि अरे आ गई तुझे मेरे यहाँ, अभी क्यों आया है? सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सुखदेव भी कहने लगे राजा परीक्षित, आज भगवान ने सुदामा जी से कहा कि अरे सुदामा, चलो यहां क्यों खड़े हो, अंदर महल में चलो। तो आज सुदामा जी को कन्हैया महल में लेकर गए, जिस सिंहासन पर कन्हैया बैठे थे, और आज सुदामा जी से कहा कि मित्र आओ बैठो। सुदामा जी ने कहा कि नहीं भैया, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। अरे लाला, तू तो यहाँ का राजा है और मैं ठहरा एक गरीब, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अरे कन्हैया, तू यहाँ पर बैठ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। तो कन्हैया ने कहा नहीं सुदामा, देखो हम दोनों मित्र हैं और इसमें गरीब और अमीर की बात कहां से आ गई, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तो आज सुदामा जी ने कन्हैया से बहुत मना किया, पर लेकिन कन्हैया वो नहीं माने और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। अब तो जैसे सुदामा जी को बिठाया तो रुक्मिणी जी से कहा कि तुम एक परात लेकर आओ और एक लोटी में जल लेकर आओ, मैं अपने मित्र के पैर धोऊंगा, अपने हाथों से पैर धोऊंगा। तभी रुक्मिणी जी परात लेकर आई, जल लेकर आई। कन्हैया ने देखा कि सुदामा के पैरों में छाले पड़ रहे हैं, कांटे लगे हुए। देखे सुदामा की दीन दशा, पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पवन हुए। जब मेरे कन्हैया ने सुदामा जी की दशा देखी, उनके पैरों को देखा, इतने बड़े बड़े छाले पड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, जगह जगह पर खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, तो मेरे कन्हैया ने जो लोटे में जल भरा था उससे हाथ तक नहीं लगाया, अपने आंसुओं से आज सुदामा जी के चरणों को धोया। सुदामा जी मना कर रहे हैं कि रहा है। आज कन्हैया बहुत जोर जोर से रोने लगे कि अरे मेरे मित्र ने, मेरे आर्य भक्त ने मुझसे मिलने के लिए कितना बड़ा कष्ट उठाया है। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, आज भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए, जैसे ही अपने आंसुओं से चरण धोए तो जो उनके घाव थे सभी ठीक हो गए, उन्हें जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। सुदामा जी ने कहा कि लाला देख, तू नीचे बैठा अच्छा नहीं लग रहा है, आजा ऊपर बैठ जा। अब तो कन्हैया ऊपर बैठ गए तो कन्हैया सुदामा जी से पूछने लगे कि अरे भैया, पहले तो ये बता तूने विवाह किया कि नहीं किया। जैसे सुदामा जी ने ऐसा प्रश्न सुना तो अब तो शर्म आ गई। कन्हैया ने कहा कि अरे बता तो सही। सुदामा जी ने कहा कि अरे लाला, कितने सारे आदमी खड़े हुए, तुझे शर्म नहीं आती, कैसा प्रश्न पूछ रहा है। तो कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा, ये कोई गैर नहीं है, ये सभी अपने ही है। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया, मैंने तो बहुत मना किया था विवाह करने के लिए, पर लेकिन घर वाले नहीं माने, उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। और सुन, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, सुशीला नाम लेते ही बहुत सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आज सुदामा जी ने भी पूछा क्या तूने विवाह नहीं किए। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ, मेरे तो बहुत विवाह हुए, मैं उनसे बाद में मिलवाऊंगा, पर लेकिन मुझे ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो जो चावलों की पोटली थी आज दामा जी उसे दबाने लग गए, छिपाने लग गए कि अरे कन्हैया कितना बड़ा, कन्हैया कितना बड़ा राजा है, इसके यहाँ कितना धन दौलत है, कितना खाने पीने के लिए है, और मैं क्या 5 मुट्ठी चावल, टूटे फूटे चावल लेकर आया हूँ। अरे मैं इस कन्हैया को दूंगा तो ये क्या कहेगा कि अरे सुदामा मेरे यहाँ आया और क्या लेकर आया, केवल चावल। आज सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, उस पोटली को छिपा रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि अरे भैया, तेरी भाभी ने तेरे लिए कुछ नहीं भेजा। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं सुदामा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजे, कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा, जल्दी से बता क्या भेजा है। सुदामा जी पोटली को दबाते जा रहे हैं, छिपाते जा रहे हैं। अब तो कन्हैया को पोटली दिख गई और उसे छुड़ा लिया। कहा कि सुदामा, तुम झूठ बोल रहे थे, मैंने कहा था ना कि भाभी ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब तो जैसे ही कन्हैया ने उस पोटली को देखा तो सुदामा की हालत को समझ गया। आज कन्हैया ने उस पोटली को खोला तो उसमें 5 तरह के चावल हैं, 5 घरों के चावल हैं। आज कन्हैया ने पहली मुट्ठी खाई तो 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो 2 लोग दे दिए, तभी तीसरी मुट्ठी खा ही रहे थे तभी रुक्मिणी जी ने हाथ भर लिया और मई मन ही मन में कहने लगी, अरे स्वामी, अरे प्रभु, जब 3 लोग सुदामा को दे दोगे तो हमें क्या सुदामा की झोपड़ी में रखोगे, हम कहाँ रहेंगे। वैकुंठ को तो कम से कम अपने पास रखो। तो आज कन्हैया मन ही मन कहने लगे कि अरे रुक्मिणी, तुम आज मेरे पास हो तो केवल एक ब्राह्मण की वजह से हो, अगर वह ब्राह्मण संदेश नहीं लाता तो आज तुम मेरे पास नहीं होती, और आज तुम ब्राह्मण को दान देने से रोक रही हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने रोक ही दिया तो मैं सुदामा को 2 लोग ही देता हूँ। आज मेरे गोविंद ने सुदामा को अपना सर्वस्व दे दिया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि जाओ इन चावलों को तुम सभी थोड़ा थोड़ा बांट लो, सभी खा लो। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आज भगवान ने अपनी सभी रानियों को बुलाया और कहा कि एक ब्राह्मण है, सभी इनसे आशीर्वाद लो। अब तो सुदामा जी एक तो वैसे ही थके हुए हैं, सभी रानियां आ रही हैं, 100 रानियां आ गई, सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, 100 भाग्यवती भव, 100 भाग्यवती भव, अब तो 100 आ गई, 200 आ गई। तो कन्हैया से कहने लगे कि अरे कन्हैया, मैं वैसे ही हाथ से अनार हिलाकर ही आशीर्वाद दे दूं तो, क्योंकि मेरा मुंह थक गया है, मैंने कुछ खाया पिया है नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तब तो नार हिला रहे हैं, 2-3 हजार रानियां आ गईं, फिर सुदामा जी ने कहा कि भैया अब तो मेरे सिर भी दुख रहा है, हाथ से आशीर्वाद दे दूं तो? कन्हैया ने कहा कि हाँ ऐसे भी चलेगा, अब तो 4-5 हजार रानियां फिर रही, सुदामा जी का हाथ भी दुख गया। कन्हैया से कहा कि अरे कन्हैया ये तेरी ही है या फिर पड़ोसियों की भी आ गई है? तो कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा चिंता मत करो, सब अपनी ही है। सुदामा ने कहा कि बता तो सही कितनी है? तो कन्हैया ने कहा कि भैया ज्यादा नहीं है, केवल 16,100 है। सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया और कितनी करेगा, 16,100 कम थोड़ी है। अरे लाला देख मैं वैसे ही थक गया हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऐसा कर इन सभी के हिस्से का आशीर्वाद तू ही ले ले। आज कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित आज सभी रानियों ने सुदामा जी के लिए कुछ ना कुछ बनाया है, सभी ने पकवान बनाए हैं अलग अलग। सभी ने जब पकवान बना लिए तो एक कमरे में रख दिए। सुदामा जी को बुलाया कि आइए सुदामा जी भोजन कर दीजिए। तो सुदामा जी ने देखा कि अरे एक से एक बढ़कर व्यंजन है, एक से एक बढ़कर पकवान है। तो सुदामा जी ने कहा कि आप एक बड़ी सी परात ले आई हैं। तो कन्हैया ने पूछा कि क्यों? कि कन्हैया लेकर तो आ, जब एक बड़ी सी परात मंगाई तो थोड़ा थोड़ा सामान सभी में से ले लिया और सभी को मिला लिया। अब तो रानियां मुंह बनाने लगी कि अरे हमने तो बड़ी मेहनत से बनाया था और इन्होंने सारा मिला दिया, अब इसमें तो कोई स्वादिष्ट ही नहीं रहा। कन्हैया ने पूछा कि अरे सुदामा तूने ऐसा क्यों किया? तो सुदामा जी ने कहा कि लाला सुन देख ये कितने सारे व्यंजन हैं और मैं अकेला हूँ, इन सभी रानियों ने मेरे लिए बनाए हैं, अगर मैं इनका खा लेता हूँ तो ये बुरा मानेंगी, इनका खा लेता हूँ तो दूसरे बुरा मानेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को बुरा लगे, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सबका ले लिया जिससे कि मैं सबका खा लूंगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। आज सुदामा जी ने भोजन किए, भोजन करके विश्राम करने लगे। सुदामा जी को 2-3 दिन हो गए द्वारकापुरी में रहते रहते। तो आज सुदामा जी कन्हैया से कहने लगे कन्हैया अब मुझे कई दिन हो गए हैं, देख तेरी भाभी घर पर अकेली है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा कुछ दिन और रुक जाओ। सुदामा जी ने कहा कि नहीं लाला फिर कभी आओ। सुदामा जी ने कहा कि लाला देख तू तो कभी आता भी नहीं है, अगर तुझे टाइम मिले तो आ जाना, हमारी तरफ भी घूम कर जाना। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं अवश्य आऊंगा। अब तो सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि अरे मैं कन्हैया से कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मांगूंगा, शायद कन्हैया मुझे अपने आप दे दे। अब तो सुदामा जी कन्हैया से कह रहे हैं कि लाला मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है जाओ। सुदामा जी फिर कह रहे हैं कि ये अपनी ही आप दे दे मुझे कुछ। सुदामा जी ने फिर कहा कि अरे कन्हैया मैं आज जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है भैया आराम से जाना। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि अरे ये अपने मन से कुछ दे ही नहीं रहा है। सुदामा जी ने फिर दोबारा कहा कि अरे कन्हैया सुन मैं जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें द्वार तक छोड़ कर आता हूँ। अब तो जैसे ही दरवाजे तक कन्हैया छोड़ने के लिए गए सुदामा जी ने कहा कि ठीक है लाला मैं जा रहा हूँ। कन्हैया के दोनों हाथों की मुट्ठी बंधी हुई है, दोनों मुट्ठियां बंद हैं। अब तो जैसे ही सुदामा जी ने देखा कन्हैया के दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद हैं, और तो सुदामा जी सोचने लगे कि अरे कन्हैया कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया है, ये मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। अब तो सुदामा जी ने कहा कि लाला ठीक है मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा कि ठीक है जाओ। सुदामा जी ने कहा कि लाला मैं अपने घर जा रहा हूँ। कन्हैया ने कहा कि ठीक है जाओ। सुदामा जी सोचने लगे कह रहे ये मुट्ठियों में कुछ लाया है पर दे क्यों नहीं रहा। कन्हैया ने फिर कहा कि लाला मैं जा रहा हूँ सुदामापुरी। तो कन्हैया ने पहले एक मुट्ठी खोली कि सुदामा हाँ यहाँ होके निकल जाना। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे इसने ऐसे ही मुट्ठी बंद कर रखी थी इसमें कुछ नहीं है। फिर सुदामा जी ने सोचा कि अरे दूसरी मुट्ठी में जरूर होगा। अब तो सुदामा जी ने फिर कहा कि लाला ठीक है मैं अब चलता हूँ। कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी भी ऐसे ही खोल दी कि हाँ सुदामा यहाँ होके निकल जाना, वहाँ होकर चले जाना। अब तो सुदामा जी सोचने लगे कि अरे ये बड़ा छलिया है, खुद तो दूसरों पर दूसरों के घर से माखन लूट लूट कर खा जाता, माखन चुरा चुरा कर खा जाता, ये मुझे क्या दे देगा, मैं इससे कैसी आस कर रहा था। आज सुदामा जी अपनी सुदामापुरी की ओर निकले। जैसे ही सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत बड़े महल खड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं। जहां पर सुदामा जी की कुटिया थी, सुदामा जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ है और दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। तो सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे और कहा कि अरे भैया ये कौन सी पुरी है। तो द्वारपालों ने कहा कि अरे भैया ये सुदामा पुरी है। कि अच्छा कि हाँ। तो सुदामा जी सोचने लगे कि अरे मुझे भी सुदामा पुरी में ही जाना था, आया तो मैं ठीक जगह पर हूँ, पर लेकिन मेरी तो यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, पर पूछता हूँ यहाँ के राजा कौन है, शायद उन्होंने कहीं पर अलग बनवा दी होगी मेरी झोपड़ी और वहीं पर मेरी पत्नी, वहीं पर मेरे बच्चे होंगे। अब तो जैसे द्वारपालों से पूछा कि अरे भैया यहाँ के राजा कौन है, तो द्वारपालों ने कहा कि अरे यहाँ के राजा सुदामा जी हैं। सुदामा जी कहने लगे कि अरे सुदामा तो हमारा ही नाम है। तो सुदामा जी ने कहा कि कोई और होगा, अरे आप हमें ये बताइए कि यहाँ के राजा कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि अरे वो अभी यहाँ पर नहीं है, अपने मित्र से मिलने के लिए गए हैं। और तो फिर सोचने लगे कि अरे मित्र मित्र से मिलने तो हम ही गए थे, वो कोई और होगा, कोई और गया होगा। सुदामा जी ने पूछा कि अरे वो कहाँ गए हैं, अपने कौन से मित्र से मिलने के लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो द्वारकापुरी गए हैं अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हैं। अब तो सुदामा जी को पूरा विश्वास हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही सुदामा हूँ। अब तो सुदामा जी सोचने लगे कि अरे अगर ये यहाँ का राजा मैं ही हूँ तो मेरी पत्नी सुशीला भी यही होगी। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि अरे भैया जब यहाँ के राजा नहीं है तो यहाँ की रानी तो होगी, आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ रानी तो यहाँ पर है। तभी रानी को बुलाया, सुशीला जी अंदर से आई, पहले से थोड़ा सुंदर हो गई थी, सिंगार पहन रखा था, घेरे पहन रखे थे, चार पांच सखियां इधर उधर घूम रही थी। और तो जैसे ही सुशीला जी बाहर आई, सुदामा जी ने सुशीला जी को देखा कि अरे ये तो मेरी सुशीला नहीं है। सुदामा जी क्या सुशीला जी पहचान ही नहीं गई, इतना रूप बदल गया। अब तो सुदामा जी सोचने लगे कि वो कोई और ही सुदामा होगा, अब तो वहां से चल दिए। जैसे ही सुशीला जी ने सुदामा जी को देखा, दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में पड़ गई कि स्वामी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा कि अरे हटिए हटिए रानी, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। तो सुशीला जी ने कहा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे सुशीला से लटक रहे दो दो चुटीला, हमारी तो यहाँ एक झोपड़ी थी और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा परिचित। सुदामा जी ने कहा कि अरे सुशीला तुम्हें ये महल मिल गए, गहने मिल गए, अच्छे वस्त्र मिल गए, अच्छे अच्छे पकवान मिल गए, फल मिल गए, तुम्हें यही तो चाहिए था, अब तुम्हें मिल गया, तुम यहाँ से आराम से रहो, पर लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो सुशीला जी ने कहा कि क्यों स्वामी आप क्यों नहीं रहेंगे। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं देवी मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, वैभव मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना एकांत में जाकर भगवान का भजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। तो आज सुदामा जी वन की ओर चल दिए, पीछे पीछे सुशीला जी, सुशीला जी के पीछे सभी बच्चे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जैसे ही सभी जाने लगे तो अंदर से महल में से भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि अरे सुदामा रुको, अरे सुदामा रुको, कहाँ जा रहे हो। तो सुदामा ने देखा कि अरे अरे कन्हैया तू, तुझे तो मैं अभी द्वारका में छोड़कर आया हूँ, तू कहाँ से आ गया। तो कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम्ही ने तो कहा था कि कभी समय मिले तो हमारी तरफ घूमने के लिए आना, इसीलिए मेरे पास समय था तो मैं दौड़ा आया। और वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? उस रामा जी ने कहा कि लाला देख, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। कन्हैया देख, जब सुख आ जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं। और कन्हैया सुन, तूने मुझे इतना धन दौलत दे दिया, इतना वैभव दे दिया है, इतने बड़े बड़े महल दे दिए हैं, तूने मुझे यहाँ का राजा बना दिया है, मेरे पास इतना सुख आ गया है कन्हैया, मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं धन दौलत में नहीं रहना चाहता। अरे वह सुख किस काम का जिसमें हम भगवान को भूल जाए, भगवान के भजन को भूल जाए। लाला मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो एकांत वास चाहिए, एक वृक्ष मिल जाए, मैं तो वहीं पर तेरा भजन करता रहूंगा। तो कन्हैया ने कहा कि सुदामा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहीं पर रहो, तुम मुझे नहीं भूलोगे, तुम मेरा भजन करते रहोगे। आज भगवान ने सुदामा जी को बहुत समझाया, सुदामा जी वहीं पर रहने लगे सुदामापुरी में, और वहीं पर भगवान का भजन करने लगे। इधर में भगवान अपनी द्वारकापुरी वापस आ गए। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, आज भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि अरे मैंने पृथ्वी के सारे भार को उतार दिया है, जितना भी अधर्म राक्षस करते थे सभी का वध कर दिया है, सभी का उद्धार कर दिया है। पर लेकिन भगवान ने देखा कि यदुवंशी बड़े उद्दंड होते हुए जा रहे हैं। आज भगवान ने अपने सभी यदुवंशियों को बुलाया और कहा कि बच्चों देखो, कभी साधु संतों के साथ मजाक मत करना, कभी साधु संत में हंसी मत करना, हमेशा साधु संतों की सेवा करना, जितना हो सके साधु संतों की सेवा करना। अब तो जैसे ही बच्चे सुन रहे थे तो नीचे नाल डालकर बैठ गए और एक दूसरे से कहने लगे कि अरे पिताजी के पास कुछ काम तो है नहीं, केवल एक ही काम है, साधु संतों से हंसी मजाक मत करना, बस इनसे साधु संतों की प्रशंसा करवा लो, और कुछ नहीं आता, और ना इनके पास कुछ काम है। भगवान ने देखा कि ये मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो मन में सोचने लगे कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर पछताएंगे बाद में। तो आज भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, पर लेकिन वह नहीं समझे। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, एक दिन क्या हुआ कि द्वारकापुरी में विश्वामित्र जी, कंड ऋषि, दुर्वासा ऋषि, अत्रेय मुनि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, नारद जी, बड़े बड़े ऋषि आए, सभी द्वारकापुरी में बैठे हुए हैं और वहीं पर भगवान का भजन कर रहे हैं। अब तो सभी यदुवंशियों ने देखा कि अरे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा द्वारकापुरी में आए हैं,